सत्संग जी प्रेम से कहना, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर वंस अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट टू इयर्स. लास्ट नाइट आई अराइव हियर फ्रॉम एडमंटन कैनेडा, right from 24th of August when I left India, Delhi. You just heard the places I visited, and I got to meet the people who also believe in brotherhood, who also believe in love, who believe in unity, in peace. And today all of you have gathered here, and I got a chance to see you all and meet you all and spend these moments in praying and praising the Lord God Almighty. You heard the words of wisdom from small children and the young and the grown-ups. And I'm also very thankful to the worthy mayor of Artesia who presented the certificate and acknowledged the works which the mission is doing for the mankind. I'm also thankful to the deputy, Mr. Simon, on behalf of the supervisor for district, and I express my greetings which I brought from India for you all and all the citizens residing in these areas. May God bless everybody with success and happiness to lead a blissful life and becoming a reason for happiness for others. The principles of the mission have been mentioned today, as has been done all over. We have branches all over the world, and mostly in India, from length and breadth of India. You know, there are so many languages in India. After a few kilometers, the language or the dialect changes. So India in itself is a country which has so diverse cultures or languages or attires, eating habits, etc. And when we see the world, once again, there are so many nations and each nation having different languages. What we are thinking and what is brought to mind of everybody is that the need of being tolerant, because we are intolerant, we do not tolerate others, we are full of ego and we look down upon others. Saints and sages and prophets since time immemorial have always taught us to be tolerant, to have compassion in our hearts for others. Love thy neighbor was said by the Lord Jesus Christ. And we have to love everybody. Love all and hate none is the slogan which we have always to keep in mind. There is so much hatred all around. As I said, we are so intolerant. So if we are intolerant, we have hate in our hearts for others. Because somebody doesn't speak the language I speak, because the other person doesn't wear the clothes, the color of clothes which I wear, or the country or region one belongs to. So caste, creed, color, nationalities, religion have become a barrier, a wall more prominent than the wall which was erected in Berlin. I happened to visit Berlin in 1987. Then the wall existed. I went to the eastern side too, and I could see the vast difference between both sides of the wall. And after some time, second time when I visited Berlin, the wall was no more. And I saw certain pieces of the wall have been maintained. And on those pieces of walls, there is graffiti done and certain slogans written on it. And one slogan, one sentence which I read and which caught my attention was that this world is too small for walls. That this world is too small for walls. And we have created barriers. God didn't. All barriers are man-made. A child born has no sign on his body, doesn't have any language. A child crying, and you cannot say a child of a Spanish parents is crying, or the child is an Indian which is crying, etc. No language the child had. But as we see that man has created barriers at every step. So that's why we are a divided lot. God wanted us to live in harmony. Gave us birth on this planet Earth. If God so wanted that I will create certain people who speak different language and have different cultures, so I should create different planets like Earth and make them live separately on their respective planets. But God gave us birth on this very planet, and we all belong to this planet Earth. So we have to strengthen the feelings of tolerance and love and have to live in harmony. Let there be peaceful coexistence, not just coexistence, coexistence peacefully. We have to exist peacefully, not fighting each other, not taking the source of violence. Violence we are seeing all around. Once again, on the basis of caste, his caste is different, mine is different. He believes in certain prophet and not believing the prophet I believe in. So there is so much violence taking place. And you can read the slogan written here, the slogan which was given prominently and projected by the mission long ago was, "Religion unites, never divides." But once again, religion becoming a main source of divisions, of inculcating not love, but inculcating the feelings and quality of hatredness, making us fight each other, making us intolerant. Religion was supposed to make us tolerant, but religion is making us intolerant, driving us towards hatred, driving us towards violence. And that has been happening and is happening today too. A poet in India once wrote few lines in English. That line was, "Although we hail from different lands We share one earth, sky, and sun. Remember, friends, the world is one. Sun is the same, moon is the same for us, earth is the same. But once again, we are a divided lot. We are all made of five common elements, the composition, the physical form we have. One who considered himself higher than other, he doesn't have six elements in his this physical form. Or the one he considers low, and that person doesn't have three elements. He's also made out of five elements. So all of us are made out of five elements. And the spirit is from the God Almighty. And God is one. So where is the difference? Elements are common. God the Creator, the Oversoul, is common. But because of ignorance, we are all divided. We all are fighting each other and hating each other. तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुषों संतों ने गुरु पीर पैगंबरों ने हमेशा ही यही इंसानों को पैगाम दिए कि इंसानों मालिक खालिक एक है एक नूरते सब जग उपजा कौन भले को मंदे लोगा भरम ना भूलो भाई खालक खलक खलक में खालक पूर्यो सर्व थाई कि ये समस्त समाई हुई परम सत्ता ये परमात्मा ईश्वर अकाल पुरख निराकार ये एक है और हम सब एक के संतान हैं और इस एक का ही नूर अगर हम घट घट में देखें तभी हमारे दिलों में हृदय में एक हित का भाव प्रेम का भाव पैदा होगा क्योंकि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं या हम दावा करते हैं तो अगर हम परमात्मा से प्रेम करते हैं यानी कि हम प्रभु प्रेमी हैं तो अगर प्रभु प्रेमी हैं तो इसके नूर से हम नफरत कैसे कर सकेंगे जब प्रभु प्रेमी हैं और उसी का नूर घट घट में बस रहा है तो फिर हम कैसे नफरत कर सकेंगे और अगर नफरत कर रहे हैं तो हम प्रभु प्रेमी हरगिज नहीं हैं हम प्रभु प्रेमी अपने आप को मान लेते हैं बिकॉज वी फॉलो सर्टन रिचुअल्स We consider ourselves as a religious person or a devotee because we perform certain rituals, dogmas, rites. That doesn't make us a devotee or a religious person or an enlightened soul. If we have hate in our hearts for others, तो अगर हम प्रभु प्रेमी हैं, तो बंदों से नफरत नहीं कर पाएंगे. गुरु पीर पैगंबर सेजेस संत महात्मा उनके मन में किसी के प्रति वैर का भाव नहीं था क्योंकि वो सही मायनों में प्रभु प्रेमी थे वो केवल कर्म कांडों के द्वारा नहीं अपने आप को एक प्रभु प्रेमी साबित कर रहे थे वो केवल जप तप स्नानों के द्वारा अपने आप को प्रभु प्रेमी नहीं साबित कर रहे थे उन्होंने अपने आप को प्रभु प्रेमी साबित किया प्रभु के ही बंदों से प्यार करके तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से ज़रूरत है इंसानों को ये समझ हासिल करने की ये अगर बात समझ में आ गई तो जैसे कहा है कि गल समझ लई फिर रौला की राम रहीम ते मौला की कि ये बात समझ में आ जाए ये बात जब तक समझ में नहीं आती उतनी देर हम क्योंकि अगर समझ नहीं है तो समझ का उल्टा क्या है ना समझी एक है ना समझी और दूसरा है समझ तो अगर समझ नहीं है तो फिर हम हर कर्म ना समझी वाले ही करेंगे हमारी चाल ना समझी के अंतर्गत ही होगी तो ना समझ हम होते हैं और दूसरों को ना समझ मान लेते हैं खुद उजागर करो हुनर अपना, दूसरों को ही ना मत कम नज़र कहना। कि अपने हुनर उजागर करो, दूसरों को कम नज़र मत कहो कि शायद उसको देखने का सलीका नहीं है। वास्तविकता में तुम्हें अपने हुनर उजागर करने की ज़रूरत है, तुम्हें अपनी उस ऊंचाई तक पहुंचने की ज़रूरत है, तुम्हें उस प्रकार से नज़रिए से युक्त होकर देखना होगा, तुम्हें वो हृदय में प्रेम भाव को बसाना होगा, तुम्हें इंसानों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना होगा। तब वास्तविकता में तुम एक उस अवस्था तक पहुंचकर उस रुतबे को हासिल कर पाओगे। तो तमाम संतों महात्माओं ने, गुरु पीर पैगंबरों ने यही इंसानों को संदेश और पैगाम ये हर युग और हर दौर में ये दिया है। द ओनली थिंग विच हैज़ टू हील इज द इल्यूजन ऑफ बीइंग सेपरेट। दैट हीलिंग हैज़ टू टेक प्लेस, दैट रियलाइजेशन, दैट अवेयरनेस हैज़ टू टेक प्लेस, दैट वी आर, बिकॉज वी आर हैविंग दैट इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट इल्यूजन एंड वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर सेल्व्स इन द ट्रूथ। एंड ट्रूथ इज दैट वी आर नॉट सेपरेट, वी आर वन। बट इट इज सो स्ट्रेंज दैट वी हैव टू वर्क फॉर दैट विच इज ऑलरेडी देयर। इट इज जस्ट द रियलाइजेशन विच हैज़ टू टेक प्लेस। वी आर मेकिंग एफर्ट्स दैट पीपल शुड बिकम वन, बट एक्चुअली वी आर वन बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, सेम गॉड ऑलमाइटी। बट इट इज सो पैराडॉक्स दैट वी आर वर्किंग टू ब्रिंग अबाउट दैट वननेस। तो एकता, एक हम हैं ही, लेकिन जैसे कहा कि रियलाइजेशन नहीं है, वो जागृति नहीं है, इसलिए वो हम जतन कर रहे हैं वो काम करने के लिए, वो स्थापित करने के लिए, जो वास्तविकता में एक रूप में देखें तो पहले ही है। पहले ही हम एक परमात्मा निराकार की संतान हैं, चाहे उसको गॉड के नाम से बुला लें, चाहे ईश्वर के, चाहे अकाल पुरख के, चाहे राम के नाम से, चाहे अल्लाह के नाम से, चाहे निराकार के नाम से, किसी नाम से पुकार लें, हैं तो हम इसी की संतान। लेकिन क्योंकि हम ये बोध नहीं हासिल करते, इसीलिए जतन करने पड़ते हैं इंसान को इंसान से मिलाने के, इंसान को इंसान के करीब लाने के, ये जतन करने पड़ते हैं। तमाम गुरु पीर पैगंबरों को यही करना पड़ा, यही समझाना पड़ा, चाहे वो सतयुग, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग, चाहे हज़रत ईसा मसीह जी, चाहे लॉर्ड रामा, चाहे लॉर्ड कृष्ण, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद, या फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, या फिर तमाम संत महात्मा भक्तजन, उन सब ने यही तो जतन किए, यही मुश्किल कार्य उन्होंने हाथ में लिया। क्योंकि सबसे मुश्किल काम इंसान को इंसान के साथ जोड़ना, इंसान की आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्रदान करनी, आवागमन के बंधन से निजात देनी, ये सबसे कठिन और मुश्किल कार्य है। दुनिया आसान काम करती है, आसान काम है जो टूटने का, आसान काम है एक दूसरे से जुदा होने का, आसान काम है दूसरे को गिराने का, ये आसान काम करते हैं। दुनिया और दुनियावी फितरतों को मजबूती हम बड़ी आसानी से देते हैं, इसीलिए हम दुनिया और दुनियादारी तक सीमित रह जाते हैं, और दुनिया और दुनियादारी के साथ पावनता और पवित्रता नहीं जुड़ी हुई है, उसमें विशालापन ही होता है, और इसीलिए हम कभी भी एक संभल नहीं पाते और ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। संभलने के लिए, ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संतों महात्माओं गुरु पीर पैगंबरों को ही जतन करने पड़े। ये ज्ञान उजाला देख के, ये समझ देख के, हमारे मन के में बसी हुई जो ऐसी दूरियां हैं उनको दूर करने के प्रयास किए, ये समझ देख के कि वाकई ही हम इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं, तो हम वैर वास्तव में उलझ के नहीं, हम प्यार के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करें, हम एक दूसरे के काम आएं, ना कि एक दूसरे का शोषण करें, ना कि हम एक दूसरे को एक्सप्लॉयट करें, ना कि हम एक दूसरे को नीचे दर्जे वाला माने, नीची दृष्टि से देखें, बल्कि हम अपने आप से दूसरे को बेहतर माने। जैसे कबीर जी ने कहा कि कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। अपने आप को नीचा माना और दूसरे को यही माना कि ऊंचा है, कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, कि हम चंगे नहीं हैं और बुरा नहीं कोए, कि दूसरा बुरा नहीं है, हम चंगे नहीं हैं। ये अगर एहसास हो जाए तो फिर हम अभिमान भी नहीं करेंगे कि मैं बेहतर हूँ दूसरे बदतर हैं, मैं बेहतर हूँ दूसरा बदतर है, ये फिर भाव नहीं पैदा होगा। फिर यही भाव होगा कि दूसरों में भी मालिक ने बड़े गुण बख्शे हुए हैं और मेरे में कई कमियां हैं, तो अपने आप को कि जा मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोए, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, जा मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोए। इस प्रकार से जब हम अपने आप को औरों से बेहतर ना माने और अपने आप को संवारने की तरफ लग जाएं, तो फिर वो भी हमारी दृष्टि जो दूसरे को नीचा करके देखती है और उसी के कारण मन में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, जलन का भाव पैदा हो जाता है, उससे हमें निजात मिल जाती है। और उससे निजात मिली तो यानी कि हमें सुकून मिल जाता है, एक सच्ची खुशी मिल जाती है, एक आनंद मिल जाता है, क्योंकि वो जो हमें बेचैन किए हुए था वो पहलू ही निकल गया बीच में से, वो कारण ही बीच में से निकल गया, तो फिर ब्लिस आनंद सुकून उसको मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उस कांटे को मैंने निकाल दिया है, वो कांटा ही तो चुभन दे रहा था, उस कांटे ने ही तो मुझे बेचैन किया हुआ था, वो वैर वाला कांटा, वो ईर्ष्या वाला कांटा, वो नफरत वाला कांटा, वो अहम वाला कांटा, उसी ने ही तो मुझे बेचैन किया हुआ था, मैं चैन नहीं ले पा रहा था। और जो ही वो कांटा निकाला, जो ही मैंने वैर वास्ता छोड़ा, जो ही मैंने नफरत छोड़ी, जो ही मैंने प्यार से हृदय को युक्त कर लिया, उसी पल से मैं आनंदित हो गया, उसी पल से मैं जो चैन महसूस होने लग पड़ा। तो हम क्यों ये कांटा अपने बदन में चुभोए रखते हैं, क्यों इस मन में इस कांटे को हम बसाए रखते हैं, क्यों इस जलते हुए अंगार को अपने मन में स्थान दिए रखते हैं, क्यों इससे वो हम बाहर नहीं फेंकते, क्यों इससे अपना दामन नहीं छुड़ाते। अगर नहीं छुड़ा रहे हैं तो फिर बात वही कि अभी भी ना समझ है, अभी भी वो समझ नहीं मिली है, अभी भी हमारे में वो जागृति आई नहीं है कि कूड़ा करकट अपनाने को हर वक्त तैयार हैं और अमृत को तजते रहते हैं, उससे दूर रहते हैं। बसाना था अमृत और कूड़ा करकट गार्बेज को अपना लेते हैं, उसको दिल में बसा लेते हैं, जो नुकसान का कारण है उससे दामन छुड़ाते नहीं हैं और जिससे कल्याण होना है उससे नाता जोड़ते नहीं हैं। इसका मतलब विवेक नहीं है, विजडम नहीं है, वो समझ नहीं है, वो सोझी नहीं है, वो सूझबूझ नहीं है, तभी नुकसान वाले कदम उठाए जाते हैं, तभी हम वो कर्म करते हैं जिससे गुरु पीर पैगंबरों ने हमें वर्जित किया था, जिससे गुरेज करने के लिए कहा था, और हम उसी की तरफ चलते हैं, जैसे छोटे से बच्चे के रूप में आग जल रही है और उसकी चमक को देखकर उस तरफ बढ़ता है, नहीं जानता कि हाथ जला बैठेगा, उसी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ना समझ है वो, उसको समझ नहीं है कि ये जिस तरफ हाथ बढ़ा रहा है ये नुकसान का कारण है, ये जला देगा, उसको नहीं समझ। और हम उम्र के लिहाज से कितने बड़े हो जाते हैं फिर भी हमारी ना समझी कायम रहती है, उम्र के हिसाब से बड़े हो जाते हैं लेकिन उस छोटे से बच्चे से भी ज़्यादा ना समझ हम अपने आप को साबित करते रहते हैं कदम कदम के ऊपर। तो इसीलिए कहने वालों ने कहा, वो फारसी में जो पंक्तियाँ अक्सर दास दोहराता है कि बुजुर्गी बाकलस ना के बसाल, कि बुजुर्गी अकल के कारण है ना कि सालों के कारण है, कि ये तो जी इतने साल का हो गया, ये तो बड़ा है, ये तो अभी बच्चा है, उम्र करके बच्चा तो भक्त प्रहलाद भी था, और बड़ा उम्र के लिहाज से उसका पिता हिरण्यकश्यप भी था, लेकिन हिरण्यकश्यप बड़ा नहीं था, बड़ा उसी का बेटा प्रहलाद था, अपने ही बाप से बड़ा था वो। तो बुजुर्गी अकलस्त ना के बसाल, सालों के लिहाज से कोई बड़ा नहीं होता है, अकल सियानप विजडम विवेक वो उसको बड़ा बनाती है। तो इसी तरह से ये बड़प्पन ये हर किसी के हिस्से में आए, यही अरदास यही शुभकामना यही प्रार्थना है कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ये अवस्था प्राप्त हो जाए, वरना तो ये जीवन की घड़ियाँ बीत रही हैं, एक एक पल हाथों से छिनता चला जा रहा है। एज़ यू हर्ड दैट लाइफ इज सो फ्रजाइल, नेक्स्ट मोमेंट वी डू नॉट नो वी विल एग्जिस्ट और नॉट, एन इंस्टेंस विच वेरी मच हैपन इन दिल्ली few years back, son driving and his father sitting by his side. The car stopped on the traffic signal. It was red light, all traffic stopped, and from red it turned to amber light and then to the green light. The car didn't move. Father said to his son, the light is green, why do not you move? There were no sound, and when the father turned his head toward his son, he was hanging his neck, he was no more. Just second, and no sound the son made of any pain or nothing like that. So that depicts how fragile our life is. So why are we wasting this precious life? We are wasting a life. It is so precious. Millions of species has been created by God, and it is said in scriptures that this human species is above all the species. And what are we doing with this, our life? We are just wasting our precious life. So, just a small stone, piece of stone, and other side a diamond in the area which we are now, and this whole diamond bar. You know diamonds. Diamonds are so precious. And a small piece of stone, compare it, its value and the value of the diamond. Our life is like a diamond. It is precious. We have to live a life accordingly. And being a diamond is, as I said before, that we have to have love in our hearts. We have to have compassion. We have to have tolerance. We have to work for harmony and make others people happy, bring a smile on their faces rather than giving tears to their eyes. That's how we have to go through this journey which we are going through now in this physical form. So that's what the saints and sages and prophets taught us. Their teachings were not for a certain time or for certain people. Their teachings were universal for whole of mankind. When we talk of love, compassion, how can we say that these teachings were a certain class of people? No, it was a universal message. It has importance. We think that it doesn't have any importance. Humbleness, humility doesn't have any importance. If you are humble, it is a sign of weakness. We often say, no. Humbleness and humility is a sign of strength. It is not weakness. So we have to be humble. We have to be broad-minded. We have to be tolerant. We have to have compassion in our hearts. Compassion, daya, nirdayata, wo vasikta mein ek kathurta aur krurta hoti hai. Aur compassion, jisko daya kaha jata hai. To aisi daya ka bhav, karuna ka bhav, प्रेम का भाव ये हमारे मन में रहे, हमेशा ही हम अहम अभिमान से दूर रहें, विनम्रता का भाव रहे और इस प्रकार से हम अपने इस जीवन के सफ़र को एक सुंदर रूप हम देते चले जाएं और कभी भी हम उन सुंदर भावनाओं से दूरी ना बनाएं, उसको हम मजबूती से पकड़ लें. उस तरह की रिडंस ना हो, लाइक अ हस्बैंड टोल्ड हिज फ्रेंड दैट इट इज आवर 25th ईयर ऑफ मैरिज, सिल्वर जुबली, सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट. देन फ्रेंड आस्क्ड, हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट? ही सेड, आई एम टेकिंग माय वाइफ टू द मून. एंड द फ्रेंड सेज, वाओ, अ ग्रेट आइडिया. It is wonderful. You are taking your wife to the moon to celebrate your 25th year of marriage. And what about the 50th year? Going to Mars? He says, no, I will bring back my wife from the moon on the 50th. So that's that sort of riddance we shouldn't have in our hearts. When it comes to love and compassion, that we are going to just drive away love, and maybe when we grow old and we feel that we won't be longer in this world, now I will start loving. No, every moment, the present time is in our hand, so we have to always be full of those feelings, and we make this world a better place to live in. So without taking much of a time, because the time which was mentioned for this congregation was supposed to finish at 9, so we are around that time. And words can go on and on and on, but words do not suffice what the action suffice. So with these few words, I will conclude and once again express my happiness to spend some time here, tomorrow leaving for Denver, Colorado. As mentioned, that very less time I am getting to spend at almost all the places. I reached Toronto on 31st, and till 8th, I covered Toronto, Montreal, Winnipeg, Edmonton, Calgary, 5 places in just 8 days. And similarly, the coming days, tomorrow to Denver, and on 11th to Washington, D.C. So very less time being spent everywhere, but it has been fruitful. तो अवसा संगत दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई. ऑल्दो इट इज़ नॉट अ वीकेंड, इट इज़ अ वर्किंग डे, बट स्टिल यू ऑल मेड, you all came here in spite of it being not a weekend, so it shows your dedication to spread this message of love and harmony, of oneness. To bahut khushi hui aap sabhi ke darshan karke, bahut kam sthanon pe jane ka mauka mil pa raha hai, लेकिन जहाँ भी जाने का मौका मिला है तो इसी बात की खुशी कि इस तरह से सभी अपना सहयोग दे रहे हैं इस सच्चाई की आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए, संसार के इंसानों का कल्याण करने के लिए और अपनी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए. तो इन्हीं शब्दों से दास साहब से इजाज़त चाहेगा. सत्संग जी धन्यवाद.